Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
आप दोनों के साथ साथ सभी सुनने वालों का नमस्कार।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ निहारिका।
Let's take a look at the headlines first this evening. Benchmark domestic indices end in red for a second straight session. Sensex loses 589 points. Nifty settles above 24,000. Union Commerce Minister Piyush Goyal says government has successfully protected domestic steel industry from unfair dumping. And crude oil prices fall over 1% on the back of oversupply concerns and the uncertainty around tariff talks.
आर्थिक सुर्खियों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स 589 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,000 के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने घरेलू स्टील उद्योग को अनुचित डंपिंग से सफलतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरुआती बढ़त को दरकिनार करते हुए कारोबार के अंत में 0.7% के नुकसान से 589 अंक गिरकर 79,213 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.9% की गिरावट से 207 अंक गिरकर 24,039 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.6% की गिरावट दर्ज हुई।
Benchmark domestic indices gave up early gains, ending in the red for the second straight session today. However, positive global cues helped the indices recover some of the lost ground. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, finally ended up with a loss of 589 points or 0.74% to close at 79,213. The National Stock Exchange Nifty 50 fell 207 points or nearly 0.9% to settle at 24,039. The broader market indices registered sharp losses, slipping over 2% each. The BSE Mid-Cap Index fell 2.44% and the Small Cap Index lost 2.56%. In the Sensex Index, 23 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top losers, Adani Ports lost 3.61%, Axis Bank slipped 3.48% and Bajaj Finserv lost 2.85%. Conversely, the top gainers were TCS, which gained 1.36%, Tech Mahindra rose 1.06% and Infosys ended 0.60% higher. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors registered losses, with only the information technology sector bucking the trend. Focused IT gained 0.63% and information technology rose 0.22%. Among the top losers, services slipped 3.11%, utilities lost 2.96% and realty slipped 2.87%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,246 companies declined, shares of 719 companies advanced, while shares of 119 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 25 companies hit their 52-week high, while 19 hit their 52-week low. And here's where I would like to bring in our expert here. So, you know, if you take a look at the broader market or the broader sectors, it's only focused IT or IT which has been growing. And let's take a look at the banking sector as well. It's seen quite a downward trend. So what do you think is the reason for that?
No, as you said, Niharika, I think today the market, only one sector that escaped the brunt was IT or the focused IT. And as far as banking, I think, see, the banking shares are always the frontline shares. When you see the markets going up, they are the ones which give you the best results or the best returns, I should say. And when the market falls, I think also they are the first ones to take the brunt. But yes, overall, the market breadth was negative, though as the trading progressed, markets also recovered from their lows. But what I think, obviously, yes, one new chapter of uncertainty is now adding up. And the, today, the immediate reason, as we see, I think, was the fresh friction between India and Pakistan after the incident that happened in Kashmir 2 days back. So I think that is adding up to the uncertainty after tariff, after Israel, Hamas, as well as Russia, Ukraine ongoing. Though there are signs of, you know, there are signs of things happen, you know, moving towards some resolution in terms of Russia, Ukraine. But otherwise, also, if you look at the other uncertainties in terms of IMF, World Bank revising India's growth forecast for the current financial year, as well downward revision, as well as and also our own economic affairs secretary recently, he's on a visit to US, who's made a statement saying that our own growth could be impacted by almost 0.5% when we, you know, because of the tariffs. So I think all these kind of reasons also are adding up to the uncertainty in the market. And Anit, as far as our own domestic reasons, obviously our inflation is under control, very much under control. RBI governor recently also said that now the focus has shifted to pushing growth and looking at what more can be done to push growth, because inflation is now under control. Other also parameters, if you look at our own capital expenditure, our steps taken in the budget to boost demand. So, but yes, these kind of uncertainties which are now prevalent in the world, and now also in our own geography also, we are now getting into that uncertain phase in terms of the relationship between the two countries and, you know, steps take harsh, you know, very strong steps taken by India. So I think that is what is leading to this reaction in the market. And I feel that going forward, at least in short to medium term, we would have this kind of, you know, range markets, you know, being impacted by such episodes.
Siddharth, aapne sari cheezon ko lagbhag samajh liya, lekin uske bawajood bhi, जैसे अभी पीछे जब रेपो रेट कम हुआ था तो आज भी और कल भी कुछ बैंकों ने अपने लैंडिंग रेट्स में कटौती करी है, क्या ये कुछ एक संकेत थे जिसने बाजार को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन बाद में ये जो आपने बात कही कि अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं बाजार में एक हल्का सा ही भय तो सही, क्योंकि दो दिन पहले की जो घटनाएं थी शायद बाजार ने उसको तो कल डिस्काउंट कर ही लिया होगा, अब आगे आने और या फिर आज इस सप्ताह का कारोबारी अंतिम सत्र था, इस वजह से भी बाजार कुछ रेंज बाउंड में चलना चाहता था, निवेशक बड़ी भूमिकाएं बनाने से बचना चाहते थे, यही सिर्फ वजह थी? क्योंकि अगर आईटी सेक्टर को छोड़ के देखा जाए तो बाकी सारे सेक्टर्स में लगातार लगभग गिरावट में ही रहे, सब रेट्स में ही बंद हुए, क्या अभी उम्मीद की या स्पेकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा?
नहीं, आपने अमित जी दोनों बातें कही, एक तरफ तो आरबीआई की बात कही, जो रेट कट हुआ उसके बाद जो बैंक्स ने रेट अपने जो रेट्स घटाए, और दूसरी तरफ आपने जो बात कही कि ये जो अनिश्चितता, तो मुझे लगता है दोनों में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जहां तक आरबीआई की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए तो ऑब्वियसली, और दूसरा मुझे लगता है जो आरबीआई का जो वो था उससे एक बात बड़ी क्लियर थी कि द मैंडेट इज नाउ शिफ्टिंग टू पुशिंग ग्रोथ, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, और हमारे लिए अपने इंडियन इकोनॉमी में डोमेस्टिक एक ही रीजन था कि डिमांड कहीं ना कहीं लैकिंग, हाँ डिमांड, तो ऑब्वियसली यू वांट टू पुश डाउन द इंटरेस्ट रेट्स, आप घटाना चाहते हैं ताकि लोग और आगे आए और आप इन्वेस्टमेंट करें और ताकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी सस्ते दर पे हो पाए, और जहाँ तक इसी वजह से बजट में भी अगर हम देखें तो इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी रिलीफ दी गई ताकि लोग जो है डिमांड पुश मिले लोगों द्वारा भी, और जहाँ तक आपने बात कही कि ये जो नया अनसर्टिनिटी क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है और मार्केट्स जो पिछले अगर एक महीने पीछे हम जाएं तो आप देखेंगे कि मुझे जो लगता था कि मार्केट उस बॉटम पे बैठी हुई थी बहुत, मतलब उसके बाद मार्केट्स नीचे नहीं जा रही थी, तो वो शायद एक जैसे ही थोड़ी स्थिति सुधरी, आरबीआई ने रेट कट किया, हमारा अपना जो अच्छा अभी भी हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज
पड़ती हुई
अर्थव्यवस्था, उस पोजीशन पे हम कायम है, चाहे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हमारी ग्रोथ फोरकास्ट को घटा रहे हो, लेकिन अभी भी वी आर 6% प्लस, तो अभी भी दुनिया में वी कंटिन्यू टू बी स्टेबल इकोनॉमी। सो वो जो आप रीजन कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने एक जो बाइंग इधर जो एक्सपर्ट आया था मार्केट्स, मतलब देवर ऑन ए रूल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये भी एक रीजन है, लोगों को एक मौका मिला तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग अपना
थोड़ी सी पोजीशन अपनी अपनी स्क्वायर अप
किया है, और एक अनसर्टेनिटी ये माहौल तो रहेगा, और इस तरह के हमको लगता है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी।
लेकिन मोटे तौर पर अगर सेंसेक्स 79 मतलब 79,000 के आसपास रहता है और निफ्टी 24,000 के स्तर को मेंटेन कर लेता है तो ये कितना स्वस्थ संकेत है, या ये भरोसा अभी भी निवेशकों को कितना बनाए रखने में सहायक होगा या नजर आएगा?
नहीं देखिए, मुझे क्या लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप अपने स्टॉक पिक कर लें, आपको जिस दिन वो अच्छे उस पे भाव पे मिलें आप उनमें इन्वेस्ट करें और इमीडिएट गेन ना देखें। मुझे लगता है कि अगर आप ये इस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगले 15 दिन एक महीने, तो मुझे लगता है वो थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा आप इस नज़रिए से इन्वेस्ट करें कि आप जो है इसमें थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। मुझे लेकिन ये ज़रूर लगता है कि अच्छा समय है, थोड़ा अच्छे समय निकल भी चुका है मुझे लगता है, तो अब ये इंतज़ार करें, अच्छे जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हों उन पर आप नज़र बना के रखें, मौका मिलेगा। लेकिन ये सोचना कि अब मार्केट्स एकदम दे विल बी ऑन द रोल, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा
जी।
And with that, let's move on to the next story for this evening. The National Stock Exchange of India has extended its condolences and support to the victims of the tragic terror attack that occurred in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April 2025. In response to the tragedy, NSE has pledged 1 crore rupees in aid, offering 4 lakh rupees each to the families of those who lost their lives. The NSE emphasized its commitment to standing with the nation during this time of grief and crisis.
शायद निफ्टी का ये कदम जो है वो मानवता के लिहाज से एक सकारात्मक और समय के हिसाब से लिया गया कदम है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ मुद्रा बाजार तक ही सीमित नहीं है।
नहीं नहीं, और अमित जी, कोई भी बिजनेस अगर इस तरह की चीजें होंगी अगर, तो मतलब बिजनेस की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, उस मतलब इट फ्लरिशेज ओनली व्हेन देयर इज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो मुझे लगता है वो एक उसका बेसिक वो है।
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 18 पैसे की कमजोरी से 85.44 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 99.6 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सिद्धार्थ, हम वहीं से वापस मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। आपने बताया बाजार तकरीबन रेंज बाउंड के स्तर पर है, लेकिन अगर इतनी सारी स्थितियों के बावजूद भी रुपए भी अभी भी एक अपना रेंज बाउंड या स्टेबिलिटी की तरफ है, हालांकि डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा किया है और वो 100 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर शायद सोने और बहुत सारी चीजों पे पड़ता नजर आएगा, तो इन सब चीजों पे आपका क्या आकलन है, रुपया अभी कितनी मजबूत स्थिति को बनाए रखने में कामयाब हो पाएगा?
नहीं देखिए, किसी भी सिनेरियो का अमित जी, मतलब अगर आप होलिस्टिकली देखें, पहले हम देख रहे थे FIIs का प्रेशर था
जी,
तो वो प्रेशर अभी थोड़ा ईज आउट हुआ है, लेकिन साथ साथ हमको क्रूड प्राइजेज में जो नीचे एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, तो उसका भी हमको पॉजिटिव साइन रुपी पे बिल्कुल मिलेगा। बट साथ साथ हमारा जो ट्रेड है, जो ट्रेड डेफिसिट तो है ही है, बट जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ की बात आई है उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। बट ओवरऑल सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, हमारे जहाँ तक फॉरेक्स रिजर्व हैं, पिछले जो हम एक महीने का जो डेटा आ रहा है पिछले 2-3 हफ्ते का, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है। तो जो इंटरवेंशन, बिकॉज जो शार्प रिएक्शन हो रहा था या शार्प डिप्रिसिएशन हो रहा था करेंसी में, वो अभी जो है वो थमा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ अगर एपिसोड ड्रिवन थोड़ा बहुत दिखे तो दिखे, बट मुझे लगता है ओवरऑल इफ थिंग्स बिकॉज US में भी एक स्लो डाउन का डर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी डॉलर रुपी डॉलर में हमारे जो है हमको एक एडवांटेज दे रहा है।
So right now, basically all economic factors seem to be pointing at a certain kind of advantage that we have, like for example, even the markets. I would really not term that as a sharp decline as one might have expected, right? And so what is the ideal horizon to invest? You earlier mentioned that, you know, if somebody is looking to invest right now or buy some stocks right now, they shouldn't look at a short period of 15 days or a month. So what would the ideal time be to look at?
See, Niharika, as far as if you ask me, I always say this, if you're coming to markets, I think you should always first thing that you should do is you should do your homework properly. You should look at the companies, they'll look at their profile. And look at the businesses, the sector, know what is the kind of company's debt on debt levels, what is their order book. So those kind of things, plus My advice to investors, because we here talk about investors, very aam aadmi investor ki hum baat karte hain yahan pe zyada is program mein, to mujhe lagta hai ki agar aap bahut bade expert nahi hain, aapki knowledge kam hai, to aap systematic investment plan SIP, you come through mutual fund route, that is one of the safest and the best routes. And there also we have seen, no, when we saw this FII episode, no, FII is exiting Indian market, we have seen no lot of people withdrawing from there. But what I feel and what also worries me each time is when the markets fall, it is the arm investor, it is the common people who start shaking. Correct. And that is the time that what I feel is that you should actually increase your investment, because that is the time where you will actually get value going forward, when your shares go up or the, you know. So what I would tell them is, this is a good time to invest. Wait for your turn, look, pick good stocks, and don't look at immediate gains. That I am very sure. I won't advise anybody that if you're looking at gains over next 6 months, you might make money. I'm not saying that you will not make, but please come with that horizon, have that at the back of your mind, that the money that you're investing in, you might, it might, it can also take some time for you to reap benefits. And markets, any people who have been patient, usually they are the people who make money.
लगातार निवेशित रहें और निरंतर निवेश करते रहें और पैनिक ना हो. अगर आप बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हैं तो त्वरित लाभ
मतलब
उम्मीद
ना करें. आप जैसे भी लोग जो मार्केट को जानते हैं, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है.
राइट. एंड विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today emphasized that India is well positioned to contribute significantly to global steel demand. Speaking at India Steel 6th International Exhibition and Conference in Mumbai, Mr. Goyal stated that the government has successfully protected the domestic steel industry from unfair dumping and irrationally low pricing. The minister highlighted that India's steel industry is highly efficient, cost-effective, and known for producing high-quality steel. Urging industry leaders to partner with the government, he called on Indian steel manufacturers and international experts to create a compelling framework to promote the use of precast and prefabricated steel structures in the real estate sector. According to him, this can reduce construction time, lower interest costs, minimize pollution, and cut down on transportation needs. Mr. Goyal affirmed the Government of India's commitment to advancing the steel sector, with large-scale efforts underway to expand the country's railway, highway, and port infrastructure, all of which will generate new opportunities for the steel industry. He also highlighted that India is negotiating at least 10 to 12 free trade agreements with countries and blocs such as the European Union to secure greater market access for India's cost-effective and high-quality steel ports. So, you know, talking about these FTAs, especially in the light of the recent incident and India's strong reaction, how do you think these are going to support India's economy as a whole and help it maintain stability in the market?
See, free trade agreements are, Niharika, something which we have been negotiating. They take a lot of time. Mm-hmm. So to say that we will see something immediately or in very recent times, I think it looks a little far-fetched. Yes, those kind of discussions, it's known and it is, I think, factored in by the market, by the economy, that these are very long-term trade negotiations which take time. I think the immediate what Indian markets or what is a determining factor for the Indian economy is the bilateral trade agreement that we are negotiated, that we are under currently negotiating with the US after Trump paused the tariffs that they were imposed on us or on the other countries also, which have been paused for 90 days. So I think we are fiercely engaged with the US in terms of negotiating a good bilateral trade agreement. And right. I think that is what would be, is something which is very critical, which would have a critical impact on the Indian markets.
स्टील इंडस्ट्री सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आ रहा था कि उनको वो जो वो डंपिंग से पूरा हमारा भारतीय घरेलू जो उद्योग था वो कहीं ना कहीं परेशान था. अगर भारत सरकार भी इस चिंताओं को समझ रही है और उसके लिए संरक्षण भी प्रदान कर रही है तो ये घरेलू स्टील उद्योग के लिए कितना एक बेहतर वातावरण तैयार करने में सहायक होगा. क्योंकि अगर हम स्टील के दामों को देखें तो पिछले काफी समय से स्टील के दाम एक रेंज बाउंड में थे और बिल्कुल लगभग लगभग स्थिर बने हुए थे. हालांकि वो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग था उसके लिए बहुत अच्छी खबर भी थी.
नहीं, और वही उसी वजह से शायद अमित जी स्टील के जो स्टील कंपनियों के शेयर भी थोड़े डिप्रेस्ड थे काफी दिनों से. तो वो बात आपने कही नहीं, शायद आप कहना नहीं चाह रहे थे. तो लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत माकूल सवाल है, क्योंकि जहां तक स्टील की बात है, जब ये ट्रंप साहब आए और उन्होंने जब ये सब टैरिफ का जब ये शुरू हुआ है इशू, उसके बाद से ये फियर था कि चाइना, बिकॉज चाइना के ऊपर भी उन्होंने बहुत ह्यूज टैरिफ लगाई हैं, तो ये एक फियर था कि अब चाइना कहाँ डंप करेगा अपने स्टील को. तो ये फियर बिल्कुल तुरंत एग्जिबिट होने लगा, क्योंकि इट वॉज फेल्ट दैट दे आर डूइंग डंपिंग एट वेरी लो कॉस्ट, एट वेरी लो प्राइजेस इन द इंडियन मार्केट. और इसीलिए आपने देखा होगा अभी दो तीन दिन पहले ही सरकार ने बहुत त्वरित गति से उन पर कार्रवाई की, और तकरीबन 12 स्टील की ऐसी वराइटीज़ हैं जिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अनाउंस की. और वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि एक तो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज सर्टेन एकदम ही लो प्राइजेस पे चला जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. प्लस कल भी प्रधानमंत्री ने जब इंडियन स्टील समिट को की ओपनिंग में बोला, उन्होंने एग्जॉर्ट किया बिकॉज स्टील इज अ सेक्टर और अ इंडस्ट्री विच इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी. और आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जी भी उनको यही बोला है कि जो 500 मिलियन टन का आप वो एक टारगेट लेके चल रहे हैं 2030 तक, तो ये शायद उन्होंने ये बोला कि आप लोग थोड़ा और बड़ा सोचिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है 2047 तक तो उसमें स्टील इंडस्ट्री का बहुत अहम भूमिका होगी.
बहुत बहुत संक्षेप में, क्योंकि अगर चीन की हम बात करते हैं तो चीन के पास उतना जो आयरन ओर नहीं है, उसके बावजूद भी वो इतने सस्ते दामों पे उत्पादन करके और ऐसे ऐसे देशों में वह डंपिंग कर देता है. इससे बचने के लिए वाकई में क्या कितनी बड़ी सोच और कितनी लंबी की प्लानिंग की जरूरत है.
बहुत बढ़िया सवाल अमित आपने पूछा. और ये भी अमित जी, इन्होंने आज वाणिज्य मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री को बोला है कि आप इनोवेशन में पैसा लगाइए, हाउ यू कैन मिनिमाइज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू ब्रिंग डाउन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज दैट विल गिव यू दैट एडवांटेज. बिकॉज सी ultimately we are moving towards a free trade world. मतलब आप ये protection कितने दिन ले पाएंगे, तो ultimately आपको globally compete करना है, केवल domestic market के लिए ही नहीं produce करना है, आपको दुनिया के लिए produce करना है.
नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पे. एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा. जापान का निकेई 1.9%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 1% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% की बढ़त से बंद हुआ. हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.2% और चीन के शंघाई कंप्यूटर सूचकांक में मामूली गिरावट दर्ज हुई. उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मजबूती ही नजर आई. लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.7% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए.
And taking you over to the US markets now, US stocks closed higher on Thursday, rallying for the third straight session as investors reacted to positive corporate earning reports from major companies and awaited developments on tariffs. The S&P 500 and tech-heavy Nasdaq Composite both gained over 2%, while the Dow Jones Industrial Average added 1.2%. The Nasdaq Composite rose 2.74% to settle at 17,166. The S&P 500 added 109 points to close at 5,485. And the Dow Jones Industrial Average gained 487 points to close at 40,093. So one might generally expect a fear-based sentiment in the US markets, given that they are indeed facing a fear of recession. And one might just, you know, expect investors pulling out. But what brings about this positive news, and for a third straight session, that is?
See, again, I think, Niharika, one of the reasons, obviously, if these are markets and sometimes if they go down below a certain level, obviously, you see people coming in and again buying it, if they see valuations at those levels. So I think that would be the reaction to these kind of, I don't think there is anything which has changed to an extent where we would, you know, see this kind of, you know, consistency in these kind of trends.
Siddharth, अगर अमेरिका बाजार की हम खास तौर पे बात करें तो क्या वहाँ के निवेशक भी या वहाँ के जो शेयर ब्रोकर्स थे भी, उनको भी लगा अब इतनी सारी स्थितियाँ तो हो चुकी, अब इससे बुरा तो शायद कुछ हो नहीं सकता. उन्होंने टैरिफ के डंपिंग्स के देख लिए, टैरिफ के रेट्स देख लिए और अब बाजार इस कदर लुढ़क चुका था, वहाँ से अब रिसेशन का भी शायद डर उनको नहीं सता रहा.
नहीं, रिसेशन का डर तो अभी भी बना हुआ है, बिकॉज अगर आप सुनेंगे वहाँ फेड चेयरमैन ने जो बोला है, हालांकि एक बात जो अभी तक लग रही थी कि दोनों लोग दो अलग रास्तों पर चल रहे हैं, फेड चेयरमैन जो पावेल साहब और ट्रंप साहब, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो लोग आगे
हाथ मिला रहे हैं,
हाथ मिला लें या मिलजुल के काम करें फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। तो मुझे लगता है वो फियर भी एक कहीं ना कहीं जो है एले हो रहा है, तो शायद वो भी एक रिएक्शन होगा, इमीडिएट रिएक्शन इन द मार्केट्स, दे आर टर्निंग पॉजिटिव। बट टू से बिकॉज इफ़ यू हर्ड हिम जर्मी पावेल, उन्होंने बोला है कि ही स्टिल वॉन्ट्स टू वेट फॉर सम मोर डेटा बिकॉज ही सीइंग साइंस ऑफ सम काइंड ऑफ स्लो डाउन इन US ऑल्सो।
जी,
लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। Minister of State for Ayush, Pratap Rao Jadhav, today said that India has now emerged as one of the most sought-after destinations for treatment and medical tourism. Addressing the Medical Value Travel Conference and Awards in New Delhi, Mr. Jadhav said that India aims to be a leader in not just heritage or spirituality, but in medical tourism as well. He added that India is at such a juncture where it is seen as a center for affordable yet reliable treatment. He noted that this will showcase the nation's outstanding medical strength and global outreach and cooperation.
बहुत संक्षेप में, इस तरह की जो मेडिकल टूरिज्म है, भारत ने दो तरीके से अपनी भूमिका बहुत स्थापित करी है। एक तो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसकी स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है और बहुत कम लागत में वो उपलब्ध हैं। तो क्या ये विदेशी राजस्व कमाने के लिए एक बेहतर जरिया भी बन सकता है?
नहीं, बिल्कुल है, और हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं मेडिकल टूरिज्म। बट मुझे लगता है जो आपने कॉस्ट की बात कही वो शायद बाहर से आने वाले आदमी को तो जरूर कम लगती है, मुझे लगता है, लेकिन जो
घरेलू,
हाँ, जो हम लोग जो घर अपने आपके हिंदुस्तान के अपने लोग हैं उनको अफोर्डेबिलिटी उस प्राइजेज में, मुझे लगता है अभी भी अफोर्डेबिलिटी और नीचे लाने की जरूरत है।
जी, केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष फरवरी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ईएसआईसी के अंतर्गत 15,43,000 नए कर्मचारियों को जोड़ा गया है। मंत्रालय के अनुसार कुल कर्मचारियों में से 7,36,000 कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में 23,000 से अधिक नए प्रतिष्ठानों को भी ईएसआई योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है।
So about social security again in very brief, it is easier to implement in a country where the population is slightly lesser, but we've got quite a bit of demographic dividend. So how can we as a country go about implementing this effectively?
See, I think we are already doing it effectively. ESIC is an organization which does that, which provides social security for people working in the private sector for the health, for some related to health issues. So I think we are all, and this data also, if you look at turn it around and look at it, is also an indicator of the people coming into the employment this thing. So people joining the new jobs as well as being protected, giving this social security through the ESIC mode.
Understood. And as for crude oil prices fell over 1% today on the back of oversupply concerns and the uncertainty around tariff talks between the US and China. Brent crude was trading 1.23% down at $65.73 per barrel. WTI crude was also down by 1.23% at $62.02 per barrel when reports last came in.
नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार में। हालांकि दिल्ली में आज सभी थोक बाजार पहलगाम की घटना के विरोध में बंद रहे। दिल्ली सरफा बाजार में सोना लगभग 1% की गिरावट से 95,220 रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी गिरावट से 97,550 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना गिरावट से 94,985 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी गिरावट से 97,076 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। सोना और चांदी शायद एक पसंदीदा विषय सभी का हो सकता है, लेकिन अगर $3,400 अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं कॉमेक्स, तो $3,400 के स्तर को छूने के बाद 3,300 के बाद आया, कहीं 3,200 के आसपास डोलता है। क्या दबाव क्या नजर आता है अचानक से कि सोने में इतनी उतार चढ़ाव है, जबकि भारतीय बाजार में अभी भी जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि सोने में जल्दी एक नया हमको स्तर देखने को मिल सकता है?
नहीं, स्तर तो देखने को मिला ही, एक तो पहली बार सोने ने 1,00,000
दोनों लगभग
बराबर हो गए और 1,00,000 का स्तर के ऊपर गया और उसके बाद अब नीचे आया, बट मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत एलिवेटेड है, तो मुझे मतलब इसकी गिरावट में कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये प्राइजेस में जो अभी अपवर्ड ट्रेंड है ये अभी मुझे लगता है बना रहेगा, जब जितनी ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी उतना वो अपवर्ड ट्रेंड अभी मुझे लगता है बना रहेगा।
सोना और चांदी कौन पहले ज्यादा तेज दौड़ेगा? अगर कुछ
मतलब मुझे लगता है लोगों की चिंता सोने की ज्यादा होती है।
चलिए सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बड़े सरल शब्दों में हमारे सभी श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
Well, quickly taking you through the headlines before we close. Benchmark domestic indices end in red for second straight session. Sensex loses 589 points. Nifty settles above 24,000. Union Commerce Minister Piyush Goyal says government has successfully protected domestic steel industry from unfair dumping. And crude oil prices fall over 1% on the back of oversupply concerns and the uncertainty around tariff talks. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.